दोनों तरफ कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर शिखर जी ने बात शुरू की, हम यहाँ आपसे पूरी इज्जत के साथ अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हम आपको अपनी बेटी क्यों दें? आपके बेटे ने हमारी बेटी को बहकाया है, वो अब हमारी ही नहीं सुन रही है। हम अपनी बेटी को आप लोगों को कभी नहीं देंगे। कावेरी जी ने गुस्से में भड़कते हुए इनकार कर दिया। अन्वय का खून खौल उठा। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि मदन जी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और खुद बात संभालते हुए बोले, अंकल देखिए, ऐसे गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। हम यहाँ प्यार से बात करने आए हैं, तो आप भी शांति से हमारी बात सुन लीजिए। इससे दोनों परिवारों की इज्जत बनी रहेगी। बहन जी, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला है और ना ही आनिया को हमारे बेटे ने बहकाया है। ये बात आप भी जानती हैं कि आनिया गलत लड़की नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमें वो अपने बेटे के लिए पसंद है, इसलिए हम यहाँ आपसे उनका हाथ मांगने आए हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अनामिका जी ने प्यार से कावेरी जी को समझाया, पर उन्होंने मुंह बना लिया। तब शिखर जी ने अजीत जी से कहा, देखिए भाई साहब, दोनों बच्चे बालिग और समझदार हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके माता पिता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इज्जत के साथ उनका विवाह करवा दें। हम प्यार से बात कर रहे हैं, हमें आनिया पसंद है। आप कभी ना कभी किसी ना किसी से तो उनका विवाह करेंगे ही, तो हमारा बेटा जब उन्हें पसंद है तो आपको दोनों को अपना आशीर्वाद देकर उनका रिश्ता जोड़ देना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते के लिए सहमति देते हैं तो हम इज्जत से बारात लेकर आएंगे और पूरे मान सम्मान के साथ आपकी बेटी को विदा करवा कर लेकर जाएंगे। पर अगर आप इनकार करते हैं तो तब भी हम धूमधाम से दोनों बच्चों की शादी करवाएंगे। हम दोनों की परिस्थिति में खुश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप इनकार करते हैं तो आप पर लोग सवाल उठाएंगे। अब आप सोच लीजिए, इज्जत के साथ अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं या समाज में अपनी इज्जत का तमाशा बनाना चाहते हैं। इतना कहकर वे चुप हो गए। अजीत जी सोच में पड़ गए। कावेरी जी ने अब उन्हें देखकर धीरे से कहा, अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम अभी आते हैं, अजीत जी ने उनकी बात सुनकर उठते हुए कहा। फिर आनिया के कमरे की तरफ देखते हुए बोले, आनिया गेस्ट को चाय पानी दो आकर। उनकी आवाज़ सुनकर आनिया बाहर आ गई और चुपचाप किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर बाहर आई और सबको पानी दिया। इस वक्त वो डरी हुई लग रही थी। मदन जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे घर की बहू जरूर बनेंगी। आनिया ने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर साइड में खड़ी हो गई। अजय आकर अन्वय के सामने आ गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो जीजू। अन्वय ने पहले उसे देखा, फिर उसके हाथ को। उसे ऐसा करते देख अजय ने झट से कहा, क्या जीजू, आप तो मुझसे हाथ मिलाने में इतना सोच रहे हैं? अरे, मेरे हाथ में बम नहीं लगा है कि आपने छुआ और बूम की आवाज के साथ आप उड़ जाएंगे। दीदी आपको पसंद करती हैं तो आप मेरे जीजू हुए और मैं आपका साला, वो भी एकलौता, तो हाथ तो मिला ही सकते हैं आप मुझसे। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पीटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी आप पसंद आए, इसलिए निश्चिंत होकर हाथ मिलाइए। इतना कहकर वो हंस दिया। बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। उसकी बात सुनकर आनिया के लबों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। अन्वय उठकर खड़ा हो गया और हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो नॉन स्टॉप बकबक करने की आदत खानदानी है? अरे नहीं, खानदानी नहीं है, दीदी को मैंने ही बोलना सिखाया है, वरना वो तो एकदम साइलेंट मोड पर रहती थी। ये ज्यादा बोलने की आदत मेरी पर्सनल है, अजय दी इतराते हुए कहा, तो सबकी हंसी छूट गई। आनिया भी खिलखिला उठी। आवाज सुनकर अन्वय ने निगाहें घुमाई। कितने दिनों बाद उसने उसकी निश्चल हंसी की आवाज सुनी थी। उसके लबों पर भी हल्की मुस्कान फैल गई। अंदर कमरे में कावेरी जी अजीत जी को भड़काते हुए कह रही थी, मुझे तो ये लड़का और उसका परिवार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। जरूर इन्होंने आनिया को अपने वश में किया हुआ है। मेरी मानिए तो इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, हम आनिया की शादी किसी अच्छे से लड़के से करवा देंगे। इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कहा और अजीत जी खामोशी से आनिया और अजय के व्यवहार के बारे में सोचते रहे। उसके बाद वे बिना कुछ कहे ही बाहर निकल गए। कावेरी जी को थोड़ी हैरानी हुई, पर वो भी उनके पीछे चली आईं। अजीत जी अन्वय के सामने आकर बैठ गए। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई थी। उन्होंने गंभीर निगाहों से सबको देखते हुए कहा, आप सबने बहुत कुछ कहा, पर अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। उनकी बात सुनकर शिखर जी ने सबका परिचय करवाया। अब अजीत जी ने अन्वय को देखकर कहा, क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? शादी अगर होती है तो हमारी बेटी को कैसे संभालेंगे? कुछ नौकरी वोकरी है कि नहीं? लेक्चरर हूँ मैं, नासिक में अपना घर है हमारा। आपकी बेटी की हर जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, इतनी काबिलियत है मुझ में, अन्वय ने बेहद शांति से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अजीत जी ने एक नज़र आनिया को देखा, जो बेचैनी से उन्हें ही देख रही थी। फिर उन्होंने अन्वय को देखकर कहना शुरू किया, आनिया घर से दो बार भाग चुकी है, हमें नहीं पता वो कहाँ और किसके साथ थी। हो सकता है आपके अलावा किसी और लड़के के साथ उनका रिश्ता रहा हो। क्या ये जानने के बाद भी आप उनसे विवाह करना चाहते हैं? उनका सवाल सुनकर आनिया की आंखें भर आईं। बाकी सब हैरानी से उन्हें देखने लगे।
वहीं अन्वय ने बिना किसी भाव के उनके सवाल का जवाब दिया। आपको अपनी बेटी पर विश्वास हो या ना हो, पर मुझे आन्या पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आपने उसके दो बार भागने की बात कही तो ये एक इत्तेफाक ही समझिए कि दो बार ये घर से भागी है, वो भी मजबूरी में, और दोनों बार ये मेरे पास पहुंची थी। वो मेरे साथ ही रही है दोनों बार, और साथ रहने के बाद भी उसने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। मुझे पसंद करती है फिर भी अपने मान को बचाए रखा। यही ये बताने को काफी है कि वो कितनी पवित्र है। आप या दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो कल भी गंगा जल की तरह पवित्र थी। आज भी उसके दामन पर कोई दाग नहीं है, और ना ही आगे कभी मैं उसके चरित्र पर कोई उंगली उठने दूंगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और दुनिया में कोई भी सच या झूठ मेरे इरादों को बदल नहीं सकता। मेरा प्रेम इन बेतुकी और बकवास बातों से ना तो कम होगा और ना ही खत्म। उसकी बात सुनकर अजीत जी के लबों पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। वे उठकर आन्या के पास आकर खड़े हो गए। आन्या, आप क्या चाहती हैं? क्या आपको अन्वय पसंद है? जैसे ही उन्होंने ये सवाल किया, आन्या के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज याद आ रहा है आपको मेरी पसंद पूछना। फिक्र हो रही है मेरी? तब ये फिक्र कहाँ थी पापा, जब मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे निहाल से शादी नहीं करनी? तब तो आपने मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, यहां तक कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर आज ये नाटक क्यों? मुझसे इनकार करवाना चाहते हैं? पर मैं इनकार नहीं करूंगी। मुझे अन्वय पसंद है और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। अगर आप एक पिता की तरह कन्यादान कर सकें तो ठीक, वरना मैं समझ लूंगी कि मैंने जन्म के वक्त सिर्फ माँ ही नहीं अपने पापा को भी खो दिया था, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी बातों में दर्द और नाराजगी झलक रही थी। उसने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की किसी से, पर आज उसके मुंह से निकला हर शब्द उसकी नाराजगी दिखा रहा था। अजीत जी कुछ पल खामोशी से उसे देखते रहे, फिर कावेरी जी की तरफ मुड़ते हुए बोले, मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा करवाइए, हमें ये रिश्ता मंजूर है।
उनकी बात सुनकर कावेरी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर वो कुछ कह न सकीं। उनसे पहले अजय भागकर किचन में गया और मिठाई ले आया, सबका मुंह मीठा करवाया, पर आन्या एक तरफ नजरें झुकाए खड़ी थी। सबने साथ में बैठकर तीन दिन बाद शादी करने का फैसला किया गया, क्योंकि उस दिन शुभ दिन था और दोनों तरफ से जल्दी शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी। कुछ देर बाद सबने विदा लिया और जाने के लिए बाहर निकल गए। अन्वय ने आन्या को एक नज़र देखा और बाहर निकल गया। आन्या भागकर गेट के पास चली गई। अन्वय उसे छोड़कर जा रहा था, पर वो उससे एक बार बात भी नहीं कर सकी। अन्वय ने जाते हुए पलटकर एक बार उसे देखा, फिर सभी वहां से निकल गए। कालेरी जी ने अजीत जी से कुछ कहना चाहा, पर बहुत काम है, ये कहकर वे चले गए। वो समझ गईं कि वे उनकी बात नहीं सुनना चाहते। उन्होंने आन्या को टॉर्चर करने की सोची, पर अजय उसके साथ था, तो वो खिसियाकर वापस चली गई। अजय आन्या की उदासी को कम करने में लगा हुआ था। अन्वय की शादी मदन जी अपने घर से करना चाहते थे, तो सभी वहीं चले आए। मदन जी की धमकी का असर ये हुआ कि माधुरी जी कहीं नहीं गई। बस तीन दिन थे तो वक्त नहीं था, इसलिए सभी जल्दी जल्दी कामों में लग गए। आज रात अन्वय शिखर जी, अनामिका जी और अपने कुटुंब के बाकी सदस्यों के साथ काउंसिल की पार्टी में शामिल हुआ। अगले दिन वे घर आने वाले थे। आन्या ने सिमरन, राहुल और उसकी दोस्त आरती को भी शादी के लिए इन्वाइट कर लिया था। मदन जी ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाया और अन्वय की तरफ से उसके कुटुंब के खास सदस्य आने वाले थे बारात में शामिल होने के लिए। जुली उसी रात आन्या के पास आ गई थी और अजीत जी ने कोई इतराज़ भी नहीं जताया था। उसके वजह से कावेरी जी अब कुछ कर नहीं पा रही थीं, तो उन्होंने भी सोच लिया कि अच्छा है, बिना दान दहेज के बोझ सर से उतर रहा है। यही सोचकर वो भी शादी की तैयारी में लग गईं। तीसरे दिन शादी थी, जो इंसानों के रीति रिवाजों के हिसाब से होनी थी। दोनों घरों में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थीं। अगले दिन हल्दी की रस्म हुई दोनों की, जिनमें करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे, उन्हीं को बुलाया गया था। उसके अगले दिन मेहंदी और संगीत हुआ, जो दोनों घरों में अलग अलग हुआ। अन्वय को इन रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मदन जी की खुशी के लिए वो सब खामोशी से कर रहा था। दूसरी तरफ आन्या हर रस्म को खुलकर एंजॉय कर रही थी, और अजीत जी बस उसके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा देते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें उससे प्यार नहीं था, बस वे कभी जाहिर नहीं कर सके। फिर कावेरी जी ने उनके दिल में हमेशा आन्या के लिए गलत बातें ही भरी थीं, जिस वजह से उनके बीच अब गहरी खाई बन चुकी थी। आन्या उनसे या कावेरी जी से कुछ नहीं कहती थी। जुली, आरती, सिमरन और अजय उनके साथ मस्ती करती थीं। वो खुश थीं, बेहद खुश थीं। अगले दिन उनकी शादी थी। रात को आन्या सो रही थी तो जुली शिकार के लिए जंगल चली गई। आन्या को नींद में उस दिन जो हुआ वो सब नजर आने लगा, और आखिर में जब वो बेहोश हुई थी, वो याद आते ही उसकी नींद खुल गई। एक बार फिर वही सपना, और इस बार तो उसने सब देखा, तो वो परेशान हो गई और बाहर निकल गई। आधी रात हो रही थी तो सब सो रहे थे और वो घर के बाहर अकेली बैठी थी। आगे